नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार द्वारा नागरिकता नियम 2026 अधिसूचित डिजिटल ओसीआई प्रणाली, बायोमेट्रिक सहमति और सख्त पासपोर्ट प्रावधान लागू। भारत और तंजानिया के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत। संयुक्त पैनल ने विकास की समीक्षा की और सहयोग का विस्तार किया। अमेरिका ने भारत को लगभग 15 मिलियन डॉलर मूल्य के 657 पुरावशेष लौटाए। और बैडमिंटन में भारत डेनमार्क में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर थॉमस कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अंतर्गत ओसीआई कार्ड पंजीकरण अब पूरी तरह डिजिटल होगा। नए नियमों में ई ओसीआई बायोमेट्रिक आधारित फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट पर पाबंदी जैसे प्रावधान शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 2009 में संशोधन किए हैं। इस बदलाव का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है। मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी नाबालिग बच्चा भारतीय पासपोर्ट के साथ साथ किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता है। अधिसूचना के अनुसार ओसीसी कार्ड पंजीकरण के सभी आवेदन अब आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जाएंगे। ओसीआई छोड़ने की घोषणा करने पर व्यक्ति को अपना मूल कार्ड निकटतम भारतीय मिशन पोस्ट या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास जमा कराना होगा। सरकार द्वारा ओसीआई दर्जा रद्द किए जाने की स्थिति में भी कार्ड लौटाना अनिवार्य होगा। नए नियम के अनुसार ओसीआई आवेदकों को अब फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एक नए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें उन्हें पंजीकरण के दौरान अपनी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के लिए सहमति देनी होगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
सरकार ने आज कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों के सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। इसके अलावा औद्योगिक आधार पर ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग 98% तक बढ़ गई और तकरीबन 49,80,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की गई। कल 41,60,000 एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग हुई थी। आपूर्ति प्रमाणीकरण कोड आधारित आपूर्ति तकरीबन 93% तक बढ़ गई है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। विदेश मंत्रालय के विशेष नियंत्रण कक्ष से भी भारतीय नागरिकों और उनके परिजनों के प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मनोज।
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने आज कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थकारों को नया प्रस्ताव भेजा है। ईरान युद्ध समाप्त करने के प्रयासों में बने गतिरोध को दूर करने में एक सहायक हो सकता है। इस खबर के बाद वैश्विक तेल मूल्यों में गिरावट देखी गई है। पिछले महीने की 8 तारीख से दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम जारी है। द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और सशक्त बनाने के लिए तंजानिया में भारत तंजानिया की 2 दिन की संयुक्त व्यापार समिति का 5वां सत्र संपन्न हुआ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में अगस्त 2017 में नई दिल्ली में आयोजित पिछले सत्र के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 के 8 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 9 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। इस विचार विमर्श में परस्पर रूप से लाभकारी आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और व्यापार तथा निवेश मुद्दों पर वार्ता के लिए एक प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में संयुक्त व्यापार समिति के महत्व का उल्लेख किया गया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के ट्यूप्रस में तेल टर्मिनल पर हमला किया। यह हमला क्षेत्र के बुनियादी तेल ढांचे को निशाना बनाते हुए 4था हमला है। रूस के स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण लगी आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। इससे पहले पिछले महीने की 16, 20 और 28 तारीख को यह केंद्र प्रभावित हुआ था। यूक्रेन पर रूसी हमले जारी हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने भारत को लगभग 14 मिलियन डॉलर मूल्य के 657 पुरावशेष लौटाए हैं। मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रेग ने इसकी घोषणा की, न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास की महावाणिज्य दूत राजलक्ष्मी कदम की उपस्थिति में कार्यक्रम में इन कलाकृतियों को लौटाया गया। तस्करी नेटवर्क की कई जांचों के बाद ये कलाकृतियां बरामद की गई हैं। एक रिपोर्ट।
श्री एल्विन ब्रैग ने कहा कि भारत में तस्करी नेटवर्क सांस्कृतिक विरासत को बड़े पैमाने पर निशाना बनाते हैं। 600 से अधिक कलाकृतियों की वापसी से ये बात स्पष्ट होती है। उन्होंने कहा कि चोरी की गई कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए अभी और काम करना बाकी है। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूत विनय प्रधान ने मैनहट्टन जिला अटॉर्नी कार्यालय, अमरीका के गृह सुरक्षा विभाग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निरंतर सहयोग की सराहना की। लौटाई गई वस्तुओं में $2 मिलियन की कांस्य प्रतिमा अवलोकितेश्वर और वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के एक मंदिर से चुराई गई नृत्य करते भगवान गणेश की बलुआ पत्थर की प्रतिमा भी शामिल है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
टेक्सास में एक विमान दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। संघीय विमानन प्रशासन FAA ने बताया कि ससेना 421C विमान कल रात ऑस्टिन से लगभग 64 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित विमरली शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यूरोपीय संसद ने चीन के नए कानून एथेनिक यूनिटी लॉ की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ये तिब्बती लोगों की सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई धरोहर को सुनियोजित ढंग से मिटाने का प्रयास है। 1 जुलाई से प्रभावी होने वाले कानून में सार्वजनिक स्तर पर चीन की विचारधारा और मंदारिन भाषा को अन्य भाषाओं पर प्राथमिकता देना है। दक्षिण अफ्रीका के एक प्रमुख हिंदू संगठन ने वर्तमान में संशोधित हो रहे स्कूल पाठ्यक्रमों में भारतीय समुदाय के योगदान को अधिक से अधिक शामिल करने की मांग की है। एक खुले पत्र में दक्षिण अफ्रीकी हिंदू धर्म सभा के अध्यक्ष राम महाराज ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय होने के बावजूद भारतीयों के इतिहास को पाठ्यक्रम में पर्याप्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए। अकादमी पुरस्कार विजेता वित्त मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन के रूस के फिल्म निर्माता पाशा तलकिन ने अपनी ऑस्कर प्रतिमा खो दी है। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें अपने साथ विमान से इसे ले जाने से मना किया था। उत्तरी लंदन में हुए यहूदी विरोधी हमले के बाद ब्रिटेन ने 4 साल से अधिक समय में पहली बार राष्ट्रीय आतंकी खतरे का स्तर सामान्य से बढ़ाकर गंभीर कर दिया है। प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने कहा कि यहूदी लोग भय में जी रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने का वादा किया। बुधवार को हुई चाकूबाजी की घटना को मेट्रोपॉलियन पुलिस ने आतंकी हमला घोषित किया और ये ब्रिटेन के यहूदी समुदाय को निशाना बनाने वाली घटनाओं में नवीनतम घटना है। गृहमंत्री शबाना महमूद ने कहा कि सरकार समाज से यहूदी विरोधी भावना को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले 7 साल के नन्हे तैराक ईशांक सिंह ने समुद्री लहरों को मात देकर नया इतिहास रचा है। एक रिपोर्ट।
कक्षा 3 के छात्र ईशांक ने श्रीलंका के तल्लाई मन्नार से भारत के धनुषकोड़ी तक लगभग 29 किलोमीटर का खतरनाक समुद्री रास्ता पाक जलडमरू मध्य को पार कर विश्व रिकॉर्ड बना है। ईशांक ने ये दूरी महज 9 घंटे 50 मिनट में पूरी की। इसके साथ ही ईशांक श्रीलंका और भारत के बीच स्थित पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
भारत थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। डेनमार्क में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराया। सिंगल्स में भारत के लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी, जबकि डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अपने अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भारत के लिए ये जीत पक्की की। अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला फ्रांस या जापान के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले के विजेता से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार द्वारा नागरिकता नियम 2026 अधिसूचित, डिजिटल OCI प्रणाली, बायोमेट्रिक सहमति और सख्त पासपोर्ट प्रावधान लागू। भारत और तंजानिया के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत, संयुक्त पैनल ने विकास की समीक्षा की और सहयोग का विस्तार किया। अमेरिका ने भारत को लगभग $14 मिलियन मूल्य के 657 पुरावशेष लौटाए। और बैडमिंटन में भारत डेनमार्क में चीनी ताइपे पर 3-0 की शानदार जीत के साथ थॉमस कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।